जो इच्छाएं हैं बहुत प्रचुर मात्रा में है। ऐसा बताया जाता है कि कोई एक कलम ले जो यहाँ से आसमान तक पहुंच जाए, यू नो यू टेक ए पेन विच कैन एक्सटेंड टू द स्काई एंड यू टेक द इंक विच इज एज लार्ज एज एन ओशन, यू नो समुद्र के जितनी बड़ी मात्रा में स्याही ले लो, उस पेन के अंदर डालो और लिखना शुरू करो हमारी इच्छाएं क्या है, स्याही खत्म हो जाएगी, इच्छाएं खत्म नहीं होगी, है क्या नहीं? तो ये हमारी जो एक इस प्रकार से, क्योंकि ये एक जन्म की इच्छा नहीं है, पूरी श्रृंखलाओं की इच्छा है, ये बहुत सारे श्रृंखलाओं में जब हम लोग आते हैं तो ये इच्छा प्रकट करते हैं। तो इसके लिए भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि हालांकि आप मेरे अंश हो, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति का मतलब होता है कि बहुत बहुत ज्यादा भयंकर प्रयास करना पड़ता है। यू नो प्रभुपाद जी एक बार शायद अमेरिका में जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, और उन्होंने बहुत लंबी क्यू देखी, कतार देखी बस की लाइन में खड़े हुए लोगों को। आप में से कितने लोग बस की लाइन में खड़े हैं या बस की लाइन में खड़ा हुआ देखा है? हमारे लिए नॉर्मल है, राइट? कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, कुछ लोग खड़े हैं लाइन में, हम भी खड़े रहते हैं कभी कभी, लेकिन प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए उनको देख के। क्यों? अभी आप सोचोगे कि इतना कोई कैसे सेंटिमेंटल हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए और वो लाइन को देख के। तो प्रभुपाद जी, एक तो क्या कारण हो सकता है, चलो आप सोचो क्यों प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए? थिंक। नहीं सोचो, एक्सटर्नल रीजन तो एक ये है कि भाई रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, जैसे बॉम्बे में जान की बाजी लगा के आदमी ट्रेन में चढ़ता है, घर पे पहुंच पाएगा वापस से कि नहीं पहुंच पाएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक बार घर से निकलता है तो जब तक नहीं पहुंचे घर वालों को पता नहीं रहता है कि वो वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। तो रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चाणक्य पंडित एक सूत्र देते हैं, हु इज हैप्पी, और वो कहते हैं ए पर्सन इज हैप्पी इफ ही हैज दिस थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड। कौन सा है? कि रोटी कमाने के लिए बहुत दूर तक नहीं जाना पड़े, यू नो वन शुड नॉट ट्रैवल वेरी, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े रोटी कमाने के लिए। और हम लोग किधर आ गए? भारत से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, इतना दूर से यहां पर आ गए। तो पहला क्राइटेरिया है, इसके लिए पहले हमारे गांव में आगे दुकान पीछे मकान, कितने लोगों ने देखा ऐसा, आगे दुकान पीछे मकान या नीचे दुकान ऊपर मकान? बहुत लोगों के पास होगा, वो कंसेप्ट हुआ करता था, उसका रीजन यही है। सो कंडीशन वन, कंडीशन टू दैट ही इज एबल टू ईट हॉट फूड कुक्ड बाय आइदर हिज मदर और हिज वाइफ, अपनी माँ या अपनी पत्नी के द्वारा बनाया हुआ गरम गरम भोजन रोज उसको मिलना चाहिए। अभी मैं हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा। और तीसरा, उसके सिर पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट हैव एनी डेट। इसके लिए भी मैं हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन एक निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में ऐसा प्रयास करना कि कभी कर्जा ना लेना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे ग्राम ले लूंगा और बांग्लादेश में भेज दूंगा या इंडिया में भेज दूंगा और कुछ घर बनाऊंगा। तो कई बार ये सट्टेबाजी जैसा हो सकता है, बहुत सारे डिवोटी लोग फंसे हैं इसके अंदर। तो इसलिए नम्र निवेदन है कि कभी भी अपने सिर पे हो सके उतना पॉसिबली कभी कर्जा नहीं चढ़ाना चाहिए, कभी भी नहीं। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि ये तीन कंडीशन जो सेटिस्फाई कर लेता है वह सुखी है। तो प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि उन्होंने देखा कि रोटी कमाने के लिए कितना भयंकर मेहनत करना पड़ता है। लोग 6 बजे सारजा में, आपके दोस्त लोग होंगे, 5 बजे वो अपने घर से निकलते हैं जॉब पे जाने के लिए दुबई में, और फिर रात को 7 बजे निकलते हैं और 9 बजे घर पे पहुंचते हैं। सुबह 5 से लगाकर 9 बजे तक इतना भयंकर मेहनत करते हैं, इतना ट्रैवल के अंदर फंसते हैं और इतना भयंकर प्रयास करना पड़ता है केवल रोटी बनाने के लिए। तो इसके लिए एक भक्त ने बहुत अच्छा कहा है कि रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, साथ में बैठ के रोटी खाना बहुत बड़ी बात है, है क्या नहीं? तो एक कारण ये था, लेकिन ये बाहरी कारण था। ये कारण शायद हम लोग भी देख सकते हैं, अगर कोई भक्त बनेगा तो वो भी शायद ये सोच सकता है कि अरे रोटी कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं क्या फायदा। लेकिन प्रभुपाद जी ने केवल वो नहीं देखा, पता है प्रभुपाद जी ने क्या देखा? प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू इसीलिए आए और उन्होंने देखा कि ये जो श्रृंखला है, ये जो क्यू है, ये एक जन्म की क्यू नहीं है, ये जन्म जन्म की क्यू में लोग खड़े हैं। कृष्ण से विमुख होके जन्म जन्म की क्यू के अंदर हम लोग खड़े हैं और 84 लाख योनि के अंदर घूमते 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 पता नहीं कब हम लोग कृष्ण के धाम में पहुंचेंगे। तो ये श्रृंखला जो है इसको देख के प्रभुपाद रोने लगे। और प्रभुपाद सोचे कि देखो जीव कृष्ण से विमुख हो गया है ना, कृष्ण भूलिया भोग जीव वांछा करे, निकटस्थ तारे माया झपटिया धरे, माया उसको पकड़ लेती है, हम लोग भूल गए। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया ते नाना विध व्यथा तुम्हार चरण ना भजिनु आमी बोली बो दुखेर कथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया विध व्यथा। बहुत अच्छा भजन है, भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं। जननी जठरे छिलाम जखन विषम बंधन पाशे एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वांछिले दिन दासे, वांछिले दिन दासे। तो कृष्ण को भूल के कृष्ण से विमुख होके हम लोग आए हैं और ऐसी लंबी लाइन में खड़े हैं और कृष्ण सोच रहे हैं कि कभी मेरे पास आएंगे। सोचो कृष्ण को कितना पेन होता होगा, अगर प्रभुपाद जी को इतना दुख हो सकता है देख के तो सोचो कृष्ण जब ऊपर से नीचे देखते होंगे कहते अरे मेरा बच्चा, हाँ ये देखो मेरे धाम के अंदर मेरे सेवा कर रहा था लेकिन मुझसे विमुख होकर चला गया और इस प्रकार से लाइन में खड़ा है और धूप के अंदर काम कर रहा है ना। मतलब एनीवे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा नहीं तो आंखों में आंसू आएंगे आपके पर यही बात है कि बहुत लंबी श्रृंखला में लोग खड़े हैं। तो भगवान कहते हैं प्रकृति स्थानी कर्षति, के कर्षण हो रहा है, वो घर्षण हो रहा है और मन और इंद्रियों के बीच के अंदर इतना सुख पाने के लिए हम लोग घूमते हैं और अलग अलग प्रकार से सुख पाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे लोवेस्ट लेवल का जो सुख होता है वो होता है इंद्रियों के माध्यम का सुख, जो आंख नाक त्वचा कान और अन्य इंद्रियों से जो प्राप्त होता है। उससे थोड़ा और आगे जाके मानसिक सुख होता है जो आदमी को मिलता है, फिर उसके ऊपर जाके इंटेलेक्चुअल सुख होता है और कुछ इगोइस्टिक सुख भी होता है लोगों के जीवन में। लेकिन ये सब सुख जो है वो हमको सच में सुखी नहीं कर सकते हैं। ओनली प्लेजर ऑन द लेवल ऑफ सोल, जो हमारे आत्मा के स्तर का जो सुख है केवल वही हमको सुखी कर सकता है। सो भगवान हर किसी का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानते हैं और जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरे पास आने की कोशिश नहीं कर रहा है तो उनको बड़ा दुख होता है। तो कोई आके प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद व्हाई शुड आई ब्लाइंडली एक्सेप्ट कृष्णा, तो ऐसा प्रश्न पूछा। जैसे कई बार हम लोग प्रचार करते हैं तो प्रचार करने जाते हैं तो बहुत सारा तकलीफों का सामना उठाना पड़ता है, राइट? तो किसी ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद हाउ कैन आई एक्सेप्ट कृष्णा ब्लाइंडली? एंड प्रभुपाद रिप्लाइड, हाउ कैन इवन यू रिजेक्ट कृष्णा ब्लाइंडली? So if you don't know Krishna, how can you reject him? So if you can't accept somebody, if you don't know him, then you can't even reject him. So first you know him. And this is very important. ये जो knowledge है, देखो जैसे मैं यहाँ पर lecture दे रहा हूँ, और सडनली दरवाजे के अंदर से इधर विराट कोहली आके मेरे बाजू में विराजमान हो जाए तो लोगों का ध्यान किधर जाएगा? विराट कोहली पे। बहुत बड़ा क्रिकेटर है। तो हालांकि लेक्चर में दे रहा हूं लेकिन ध्यान लोगों का उधर होगा कि अभी वो हंसा, अभी वो दुखी हुआ, अभी उसको नींद आ रही है, जैसे कुछ लोगों को आ रही होगी शायद अभी क्लास में। तो क्यों? क्योंकि आकर्षण है उसके प्रति, लेकिन वो आकर्षण क्यों है? क्योंकि उसके बारे में ज्ञान है, उसके बारे में जानते हैं, है कि नहीं? कि सिम्बा आ गया, सिम्बा आया तो लोग सिम्बा को देखेंगे, है ना? भले प्रभु जी क्लास दे रहे उधर ध्यान नहीं जाएगा तो आकर्षण होगा। तो अगर कृष्ण को जानेंगे तभी तो कृष्ण के प्रति आकर्षित होंगे। कृष्ण शब्द का क्या मतलब है? सर्व आकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव, बट वी डोंट फील अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा। व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो सफिशिएंटली कृष्णा, कृष्णास पोजिशन, कृष्णास पावर, कृष्णास एनर्जी। सो व्हेन वी नो अबाउट कृष्णा, कृष्णास एनर्जी, कृष्णास पावर, देन ओनली वी कैन लव कृष्णा, वी कैन नो अबाउट कृष्णा। सो एनी वे, तो हम जब प्रचार के लिए जाते हैं तो बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा है कि एक बार कुछ भक्त लोग ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और कई बार ऐसा होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम बहुत सारी बाधाएं आती है, या भगवान के बारे में बोलते हो तो बहुत आर्ग्यूमेंट का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों को एक चीज समझना चाहिए कि अलग अलग स्ट्रेटेजी से अलग अलग लोगों को हैंडल करना पड़ता है, यू नो, वन साइज डज नॉट फिट एवरीवन। तो मैं आपको एक छोटा सा एपिसोड बताता हूं नारद मुनि के जीवन से। तो अभी हम लोग बहुत भागवतम पढ़ रहे हैं और नारद मुनि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यही पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, प्रीचिंग स्ट्रेटेजीज यूज्ड बाय नारद मुनि। तो ब्रीफली पहले आपको नारद मुनि के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं कि नारद मुनि जो है भगवान की दो प्रकार से सहायता करते हैं। कैसे, किस प्रकार से भगवान की सहायता करते हैं नारद मुनि, बताइए, हाथ उठाइए। प्रचार करके। अच्छा, और
यस,
वंडरफुल, पार्टिसिपेटिंग, पर्सनली पार्टिसिपेटिंग इन द लीला ऑफ द लॉर्ड, दैट इज वन। एंड सेकंड, बाय गाइडिंग, बाय काउंसलिंग, बाय प्रीचिंग, यू नो मेनली। तो उनके बहुत सारे बड़े बड़े भक्त हुए हैं जो भी हम देखेंगे आगे चल के। तो नारद मुनि के भागवत में तीन जन्म बताए गए हैं, थ्री बर्थ्स ऑफ नारद मुनि। वैसे चार प्रकार के बर्थ होते हैं, जस्ट फॉर यू नो डिफरेंट। एक तो होता है, जो होता है इसको बोलते हैं मर्त्य जन्म, मतलब जो आदमी जन्मता है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो पैदा हुआ है वो मरने वाला है। दूसरा होता है अमर, एक होता है मर और दूसरा होता है अमर। अमर का मतलब ये नहीं कि आदमी मरता नहीं है, जैसे देवता लोग है, लेकिन उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, ऑलमोस्ट कि जैसे वो नहीं मरे उस तरह से, इसलिए उनको अमर कहते हैं। बट ब्रह्मा जी के एक दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद है चिरंजीव। चिरंजीव का मतलब होता है कि वो भी मरते हैं लेकिन ब्रह्मा जी का पूरा जीवन काल तक वो चलते रहते हैं। और चौथा है नित्य, नित्य मतलब इटर्नल, जो कभी मरते नहीं है। सो नारद मुनि, ऐसा बताया गया भागवत में और अन्य शास्त्रों में कि वो भगवान के अवतार है, है क्या नहीं? कितना लोग जानते हैं नारद मुनि भगवान के अवतार हैं? बस भागवत नहीं पढ़ा। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है फिर कि नारद मुनि अगर भगवान के अवतार है तो वो विष्णु तत्व है या जीव तत्व है? हाथ उठा के बोलो। तो भगवान के अवतार कैसे हुए? भगवान का अवतार तो विष्णु तत्व ही होता है, राइट? आप जितने भी भगवान के अवतारों को गिन लो, सब अवतार के अंदर यस, वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश अवतार का मतलब वो जीव तत्व है, वो नित्य है, वो मर्त्य नहीं है, अमर नहीं है, वो नित्य है, जीव है, लेकिन ही स्पेशली एम्पावर्ड बाय कृष्णा, वो भगवान के इस प्रकार से अवतार है। तो नारद का मतलब होता है वन हु इज गिवर ऑफ नारायण, नारद जो देने वाला है। तो एनीवे, नारद मुनि के बर्थ के बारे में इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षेप में एक दो मिनट में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले वो एक गंधर्व थे जो बहुत अच्छा गाते थे, उनकी वाणी बहुत अच्छी थी। तो दो प्रकार से लोग आकर्षित होते हैं इस दुनिया के अंदर। पुरुष जो होता है वो स्त्री की सुंदरता से आकर्षित होता है, राइट? और स्त्री जो है वो पुरुष की वाणी से आकर्षित होती है। तो इसलिए कई बार वाणी का बहुत आदमी को गर्व हो जाता है। तो नारद मुनि गंधर्व थे, बहुत अच्छा गाते थे और उनको गर्व हो गया। तो एक देवताओं की सभा में जहां पर भगवान का गुणगान करना चाहिए वहां पे वो कोई मुंडेन गाना गाने लगे, तो उनको श्राप मिला और कहा कि क्योंकि तुम्हारा ये जो हाई बर्थ है गंधर्व का और इतनी अच्छी वाणी है, इस पे तुमको गर्व हो गया है, तो जाओ तुम मृत्यु लोक में जाओ और तुम दासी पुत्र बनोगे। तो फिर वो दासी पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। और फिर आप वो स्टोरी जानते हैं, भागवत के अंदर आता है कि किस प्रकार से भक्ति वेदांतिस वहां पर आए चतुर्मास के लिए और भक्ति वेदांतिस की सेवा कर करके उनका प्यूरिफिकेशन हुआ और उनका जो उच्छिष्ट उनको मिलता था वो खाते खाते भक्त पद धूलि भक्त पद जौ भक्त भुक्त अवशेष तीनी महाबल, ये तीन महाबल है। तो वो उच्छिष्ट खा के और वो प्यूरिफाई हुए, फिर उनकी माँ का देहांत हो गया और वो जंगल में जाके और भगवान का ध्यान करने लगे। और जैसे ही ध्यान कर रहे थे तो उनको ऐसा आभास हुआ कि भगवान बाहर प्रकट हुए हैं, और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली भगवान ने उनको दर्शन दिया और इमीडिएटली डिसअपीयर हो गए। और भगवान ने कहा कि इतना जल्दी मैं तुमको नहीं मिलूंगा, इसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा तुमको, तो दूसरे जन्म के अंदर वापस से तुम मुझे देख पाओगे। और फिर ब्रह्मा जी का वो जो जन्म हुआ जिसमें नारद मुनि अपीयर होते हैं वो उनके मानस पुत्र के रूप में होता है। तो ये तीन जन्म जो है वो नारद मुनि के भागवत में बताए गए हैं। सो भगवान का ये जो सुंदरता नारद मुनि ने देखी तो तुरंत आंख खोल दी, तो भगवान की सुंदरता को देखने के लिए वो ललायित हो गए और फिर वो भगवान को ढूंढ रहे थे अपनी वीणा लेके। नारद मुनि बजाई वीणा राधिका रमण नामे। और ये नारद मुनि एक ऐसी पर्सनालिटी है जो श्रीमद् भागवतम के हर कैंटो में आते हैं, हर जगह पे नारद मुनि इज ऑल परवेडिंग। उनको कहीं जाने के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए, वीजा नहीं चाहिए, यू नो ही कैन ट्रैवल फ्रीली, ही इज ए ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन। कहीं पे भी वो घूम सकते हैं, जा सकते हैं और हर किसी के पास में, चाहे वो भक्त हो या चाहे वो दुष्ट हो, दोनों के पास में नारद मुनि जाते हैं। और आप जानते हो बहुत सारी स्टोरीज हम देखेंगे कि नारद मुनि ने बहुत बड़ा बड़ा रिस्क भी लिया। मैं पहले आपको रिस्क के बारे में बताता हूं कि नारद मुनि ने कैसा कैसा रिस्क लिया है। दक्ष प्रजापति को जानते हैं, सुना है नाम? दक्ष प्रजापति शिवजी ने खाली उनको प्रणाम नहीं किया तो दक्ष प्रजापति ने क्या किया, इतना बड़ा आतंक मचाया और उस वजह से इंडेट शिवजी को अपने दूतों को लाना पड़ा, उसका वध करना पड़ा और बहुत कुछ हो गया। तो इतना गुस्सा दक्ष को था कि खाली प्रणाम नहीं किया तो शिवजी को उसने इग्नोर कर दिया और वापिस से बुलाया नहीं। और उसी दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र तपस्या करने को जा रहे थे और जब वापिस आ रहे थे शादी करने के लिए तो नारद मुनि बीच में आ गए और उन लोगों को प्रचार किया। कैसे प्रचार किया हर्षव को नारद मुनि ने, किसी को पता है? दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद मुनि ने कैसे प्रचार किया? किसने भागवत पढ़ा है हाथ उठाइए। हाँ, वहां तक नहीं पहुंचे अभी, पहले कैंटो 5th चैप्टर पे हम लोग। जीवन बहुत छोटा है। किसी को पता है नारद मुनि ने इनको कैसे प्रीच किया? एनी आइडिया? हाँ, वेरी नाइस रोज जी, वंडरफुल। उन्होंने एक रीडल पूछा, एक रीडल। हाँ, रीडल मतलब क्या होता है? एक पहेली पूछी खाली उनसे और उस पहेली से, एक पहेली से 10,000 डिवोटी। कौन इतना बड़ा प्रीचर होगा बताओ? एक पहेली पूछी और उससे 10,000 भक्त बन गए। हम लोग कई बार पूरा घसते रहते हैं और एक भक्त नहीं बनता है। अरे एक भक्त करो, हम लोग ही भक्त नहीं बनते सबसे पहले तो। एक पहेली पूछी, ए वन रीडल, 10,000 डिवोटीज। लेकिन कितना बड़ा रिस्क था उसके अंदर कि सोचो दक्ष क्या करता उनका। जब दक्ष को पता चलता कि मेरा एक नहीं दो नहीं मेरे 10,000 पुत्रों को सीधा एक साथ डिवोटी बना दिया और वो भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ नहीं, गृहस्थ हो तो बात अलग है, कितना बड़ा रिस्क लिया। फिर दूसरा रिस्क लिया नारद मुनि ने हिरण्यकश्यपु के पास जाके। आप सब जानते हैं हिरण्यकश्यपु के बारे में। हिरण्यकश्यपु का एक भागवत में चैप्टर है जिसका नाम है हिरण्यकश्यपु टेररिजेस द यूनिवर्स। अगर आप पढ़ोगे सेवेंथ कैंटो में तो हिरण्यकश्यपु अपने आंखों के भौहों से आईब्रो से पूरा संसार कंट्रोल करता था। किसके पास ऐसा रिमोट कंट्रोल है जो अपनी आंखों से करे। हाँ, कभी कभी कोई कोई युवतियां कर लेती है ढिशकियां गोली चला के आंखों के सहारे, लेकिन थोड़ी देर के लिए इंटरनेट पे सेंसेशन रहता है, बाद में खत्म हो जाता है। लेकिन हिरण्यकश्यपु पूरे संसार को कंट्रोल करता था अपनी आईब्रो से। गर्मी लगती थी तो थोड़ा ऊपर करता था, पवन देव ठंडी ठंडी हवा भेजते थे। ठंडी लगती थी तो इधर करता था, सूरज देव धीरे धीरे अपना सूरज का प्रकाश छोड़ते थे। और इतना खतरनाक था, उसके पास नारद मुनि गए प्रचार करने के लिए। और जब प्रचार करने के लिए गए और जैसे ही नारायण का नाम ले रहे थे, नारद मुनि बजाई वीणा राधिका रमण नामे, तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने आव देखा ना ताव अपनी चंद्रहास तलवार निकाली और उस तलवार को घुमाते हुए और नारद मुनि पे फेंक दिया। अब ये चंद्रहास तलवार ऑर्डिनरी तलवार नहीं था, किसी को इसका स्पेशलिटी पता है? चंद्रहास तलवार जाता था अपने विरोधी को मार के, और कोई भी पास में जो नदी या कुंड है उसमें जाके अपने आप को धोता था और वापस आके और उसके म्यान में चला जाता था। तो लेकिन जैसे ही उसने घुमा के फेंका, वो तलवार गई नारद मुनि के शरीर में से बाहर निकल गई और नारद मुनि को कुछ नहीं हुआ। और ये देख के थोड़ा सा हिरण्यकश्यपु थोड़ा उसको लगा, ये क्या हो रहा है? फिर पास में गया, नारद मुनि के कान में पूछा, कौन सी चक्की का आटा खाते हो? ऐसा क्यों नहीं हुआ तुमको? तो नारद मुनि ने कहा कि तुमको ऐसा शरीर चाहिए क्या? दुल्हा चाहिए चाहिए। क्योंकि नारद मुनि क्या करते हैं कि जहां पर लीला भगवान की थोड़ी स्लो होती है वो गियर में गाड़ी डाल देते हैं आगे भगाने के लिए। तो उनको हिरण्यकश्यपु को बाहर निकालना था, तो बोला कैसी शरीर चाहिए? बोला हाँ चाहिए। तो बोला भगवान का नाम लो। तो बोला इम्पॉसिबल, भगवान का नाम नहीं लूंगा, दूसरा तरीका हो तो बताओ। तो बोला दूसरा एक तरीका है, इतना तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा मेरे बरोबर में आ जाओगे, मंदार पर्वत पे जाके तपस्या करो। तब हिरण्यकश्यपु ने जाके मंदार पर्वत पे हजारों वर्ष तक तपस्या की, और इस प्रकार से तपस्या की कि अपने एक अंगूठे पे खड़ा था। कितने लोग अपने एक अंगूठे पे खड़े रह सकते हैं? हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे उत्तर पता है। और अपने हाथ को इस प्रकार से ऊपर करके और आसमान में देखते हुए 1000 सेलेस्टियल जो होते हैं साल, उस तक तपस्या करने लगा। तो आजकल जैसे मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जैसे बंबई में हम जब ट्रेन में जाते हैं तो हम बहुत सारे हिरण्यकश्यपु को वहां देखते तपस्या करते हुए सेम पोज में खड़े रहते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ होती है ट्रेन में कि दो पैर तो नीचे रख नहीं सकते हैं, तो एक पैर पे अंगूठे पे खड़ा रहना पड़ता है और ऊपर पकड़ने के लिए हाथ ऊपर करने पड़ते हैं और ऊपर हाथ करके, और क्योंकि सिर को सीधा नहीं रख सकते हैं, नहीं तो योर हेड विल बी इन समबडीज आर्मपिट, किसी की काख में चला जाएगा, तो सिर को ऊपर करके रखना पड़ता है। और ऐसी भयंकर ट्रेन में लोग तपस्या करके ट्रैवल करते हैं रोटी कमाने के लिए, जैसा हम पहले हमारा शुरुआत ही वहां से हुआ था तो करते हैं। लेकिन वैसी ट्रेन में खड़े रह के भी लोग क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर लेते हैं। बेचारा हिरण्यकश्यपु ने कभी सोचा नहीं होगा कि क्रॉसवर्ड पजल कोई ऐसा कर सकता है। एनीवे, तो इतना बड़ा रिस्क लेके नारद मुनि वहां पे गए। फिर नारद मुनि कंस के पास गए, जो दूसरा रिस्क था, जब कहा कि कौन से पेटल में से पहला है या आठवां है। फिर एक और रिस्क लिया नारद मुनि ने, किसके पास जाके? मृगारी के पास, है कि नहीं? फिर नारद मुनि ने रिस्क लिया रत्नाकर वाल्मीकि के पास जाके, जब वो टापू था। और सबसे बड़ा रिस्क नारद मुनि ने लिया एक और, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, मृगारी मैंने बोल दिया, वाल्मीकि बोल दिया, और क्या? हाँ, वो तो हम लोग सभी फंसे हैं सर। एक जो आप लोग रोज करते हो और बहुत प्रचार करते हो उसका, लेकिन वो पॉइंट भूल रहे हो। एनीबॉडी कैन रिमेम्बर? नारद मुनि टिक टुक वन मोर रिस्क, हो गया। एनीवे, देखो दिस रिस्क वेयर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिकल लेवल ग्रॉस नारद मुनि टुक रिस्क ऑन मेंटल लेवल ऑल्सो. इतना हिंट मैंने दे दिया, अभी आप बताओ मेरे को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं. हाँ नहीं नहीं उत्तर उसके बाहर होगा, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना. वो था नल कुवेर और मणिग्रीव. नारद मुनि टुक रिस्क. हाउ डिड ही टेक रिस्क अब बताओ मेरे को. हाउ डिड ही टेक रिस्क टू गो टू मणिग्रीव एंड नल कुवेर. कमॉन Yeah, he was a brahmachari. Narad Muni was a monastic brahmachari. And he is going to such a place where naked women are, you know, bathing. और वहां पे जाना चाहिए था क्या? लेकिन उन्होंने देखा कि इतना ये कुबेर के बच्चे लोग जो है इतना गिर गए हैं उसका उद्धार करने के लिए. एक बार प्रभुपाद के इनिशियल शिष्य लोग कुछ लोग उन्होंने बोला ये जगाई मधाई का पास्ट टाइम देख के बड़े आकर्षित हो गए और बोला अरे हम लोग को भी ऐसा कुछ करना चाहिए. जगाई मधाई डिवोटी बन गया तो पूरा नवदीप डिवोटी बन गया. हम लोग भी करेंगे. प्रभुपाद के पास जाके बोला प्रभुपाद कैन वी गो इन द बार एंड प्रीच पब में जावे क्या? प्रभुपाद बोला जाओ लेकिन वापिस भी आना. प्रभुपाद ने मना कर दिया था. एनीवे बोले कि तुम्हारा वो लेवल नहीं है. और एक बार एक टैक्सी ड्राइवर प्रभुपाद को ड्राइव कर रहा था अमेरिका में और उसने पूछा स्वामी जी कैन यू शो मी सम मिराकल व्हाट मिराकल यू कैन डू. और प्रभुपाद अलग अलग रूपों से अलग अलग लोगों को प्रचार करते थे. तो प्रभुपाद ने सोचा ये आदमी नशेड़ी है इसको मैं क्या समझाऊं. तो उन्होंने कहा कि आई कैन एंटर इन ए रूम विच इज फुल ऑफ नेकेड वुमेन एंड विदाउट एजिटेटिंग कम आउट. तो गाड़े चले जाओ वाओ. और उसका स्टेयरिंग और उसको दोनों को झटका लगा. तो सोचा क्योंकि उसके लिए मिराकल था. बाकी तो नारद मुनि ऐसा अलग 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 रिस्क लेते हैं. लेकिन जीवर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण. तो इस प्रकार से तो नारद मुनि की स्ट्रेटेजी के बारे में बताते हैं. तो सबसे पहले हर्यश्व जो दक्ष प्रजापति के 10 लोग बेटे थे उनको नारद मुनि ने कैसे प्रचार किया अभी हमने देखा पहेली के द्वारा बाय रिडल. तो कौन सी स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई क्योंकि वो जो थे उनका लेवल बहुत हाई था. They were not on the lower level. They were on a very very high level because उन्हें तपस्या की थी. They were so intelligent. तो उनको केवल एक पहेली कहा और बस that is it. एक बार प्रभुपाद के initial disciples में तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब यहाँ पर आए जुहू के अंदर और वो लोग जब जमीन पे सोते थे तो कोई उनके बिस्तर वगैरह सब चुरा के चले जाते थे. थोड़े दिन के बाद में तमाल कृष्ण गोस्वामी ने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हैं. हम लोग वापिस जाएंगे अभी क्योंकि हमको बटन दबाओ तो लाइट चालू होना चाहिए बटन खोलो तो पानी आना चाहिए. ऐसे सब में रहने वाले लोग हैं हम लोग इधर नहीं रह सकते. चूहे हुए सब यहाँ पे है. प्रभुपाद ने उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछा. व्हाट वाज दैट क्वेश्चन. उन्होंने पूछा डू यू वांट टू गेट प्यूरिफाइड. क्या आपको शुद्ध होना है. एंड दिस वन क्वेश्चन तमाल कृष्ण महाराज अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड उसके बाद कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं किया और इतने बड़े भगवान के भक्त बने वो. तो ऐसे इंटेलिजेंट लोगों को सिर्फ एक पहेली पूछा उन्होंने एक रिडल. वो रिडल मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर टाइम है तो. या तो खाली रिडल का आंसर आप लोग ढूंढना भागवत के अंदर मैं आपको पढ़ के बताता हूं. तो वो कहते हैं द ग्रेट सेज नारद सेड माय डियर हर्यश्रव यू हैव नॉट सीन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द अर्थ देर इज ए किंगडम वेयर ओनली वन मैन लिव्स. तो पहले बताया कि ये जो धरती है इसके बारे में आप जानते नहीं हो ये कौन है. यहां पर केवल एक व्यक्ति है जो रहता है. एंड वेयर देयर इज ए होल फ्रॉम व्हिच हैविंग एंटर्ड नो वन इमर्जेस. और एक ऐसा खड्डा है जिसके अंदर लोग चले गए तो कोई वापस नहीं आ सकता. ए वुमन इज देयर हु इज एक्सट्रीमली अनचेस्ट अडोन्स हरसेल्फ विद वेरियस अट्रैक्टिव ड्रेसेस. और एक ऐसी महिला है जो एकदम मतलब असती है सती नहीं है वो एक वैश्या के जैसी है और अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनती है. एंड द वन मैन हु लिव्स देयर इज हर हस्बैंड. और एक आदमी है जो उसका पति है मतलब वैश्या का पति है. इन दैट किंगडम देयर इज अ रिवर फ्लोइंग इन बोथ डायरेक्शन. और उस राज्य में एक नदी है जो दो दिशाओं में बहती है. कोई भी नदी दो दिशाओं में नहीं बहती है. ए वंडरफुल होम मेड 25 मटेरियल्स और 25 तत्व के बना हुआ कोई एंटिक आइटम है, ए स्वान दैट वाइब्रेट्स वेरियस साउंड्स, और एक हंस है जो अलग अलग आवाजें निकालता है, एंड एन ऑटोमेटिकली रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट मेड ऑफ शार्प रेजर्स एंड थंडरबोल्ट, और एक ऐसा एक रिवॉल्विंग कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे ब्लेड और रेजर्स वगैरह लगे हुए हैं. यू हैव नॉट सीन ऑल दिस एंड देयरफॉर यू आर इनएक्सपीरियंस्ड बॉयज विदाउट एडवांसिंग नॉलेज, हाउ देन विल यू क्रिएट प्रोजेनी. अलास योर फादर इज ओमनिशिएंट बट यू डू नॉट नो हिज एक्चुअल ऑर्डर, तुमको तुम्हारे पिता का आदेश पता नहीं है. विदाउट नोइंग द एक्चुअल पर्पज ऑफ योर फादर हाउ विल यू क्रिएट प्रोजेनी. सो बेसिकली नारद मुनि वहां पर आए, 10,000 लोग आ रहे थे, उनको पूछा किधर जा रहे हो, तो उन्होंने क्या कहा, व्हाट वाज देयर आंसर व्हेन नारद मुनि आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, कम ऑन एनीबॉडी, हाँ शादी करने जा रहे हैं. तो नारद मुनि ने कहा कि एक धरती है जिसमें खाली एक आदमी रहता है, जानते हो उसको, नहीं, शादी करोगे. फिर उसके अंदर एक खड्डा है जिसमें जो जाता है वापिस नहीं आता है, जानते हो उस खड्डे को, नहीं शादी करोगे. तो एक नारी है जो वैश्य की तरह है, वो इस प्रकार के गलत गलत कपड़े पहनती है, जानते हो उसके बारे में, नहीं शादी करोगे. तो उसको बोला एक उसका पति है, जानते हो, नहीं और शादी करोगे, उसके बारे में नहीं जानते. फिर बोलता अच्छा एक नदी है जो दो दिशाओं में बहती है, जानते हो उस नदी के बारे में, नहीं आ गए शादी करने के लिए. और फिर इस प्रकार से बोलते हैं और अलग 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 चीज कह के इतना उनको डिप्रेस कर देते हैं कि वो लोग सीधा जाके ब्रह्मचारी बन जाते हैं. एक रिडल सुनाते हैं ब्रह्मचारी. सो दिस इज वन स्ट्रेटजी ऑफ नारद मुनि. तो सेम स्ट्रेटजी नारद मुनि ने सबके लिए नहीं अपनाई, ठीक है. मृगारी था, अभी मृगारी या वाल्मीकि, ठीक है, रत्नाकर जो पहले डाकू था, उनको जाके उन्होंने रिडल नहीं सुनाया क्योंकि उनका लेवल पहली वाला नहीं था, रिडल सुनने वाला नहीं था. तो नारद मुनि ने मृगारी को कैसे प्रचार किया, हाउ डिड नारद मुनि प्रीच टू मृगारी. मृगारी का स्टोरी मालूम है ना, कि वो भी बता दूं मैं. मृगारी वो डाकू था जो जानवरों को अधमरा करके मारता था, है ना, उसको अधमरा करके छोड़ देता था और उसको मरता हुआ देख के आनंदित होता था. तो जब तड़पता था कोई जीव तो उसको आनंद आता था. जैसे आपने अगर बकरे को या हलाल होते हुए देखा है तो वो जब तड़पता है तो कई लोगों को उसके अंदर आनंद आता है, और कई लोग जिसके दिल में करुणा है वो रोने लगते हैं. तो वो जब अधमरा करता था तो उसको आनंद आता था. तो नारद मुनि ने कैसे उनको प्रचार किया, स्पेशल इफेक्ट्स, ही प्रीच्ड बाय स्पेशल इफेक्ट. उसको अलग अलग स्पेशल इफेक्ट देके और उसको बताया कि नर्क क्या होता है, नर्क के अंदर यातनाएं कैसी दी जाती है, कुंभी पाक क्या होता है, रौरव क्या होता है, दूसरे नर्क क्या होते हैं, कहां जिसको आपको डुबाया जाता है, जहां पर आपको जलाया जाता है और इस प्रकार से यातना दी जाती है, आपके पूरे शरीर को फाड़ा जाता है. और इस प्रकार से जो डिस्क्रिप्शन दिया वो डिस्क्रिप्शन सुन के मृगारी डर गया, उसको समझ में आया उस लेवल पे, क्योंकि उसका लेवल उतना ही था. तो उसने अलग अलग प्रकार से इस प्रकार से स्पेशल इफेक्ट दिए नारद मुनि ने कि मृगारी घबरा गया और डिवोटी बन गया. तो एक जगह नारद मुनि ने केवल एक पहेली सुनाई और 10,000 डिवोटी, और यहां पे स्पेशल इफेक्ट देके डिवोटी बना दिया. फिर प्राचीनी भरी, प्राचीनी भरी उसको कैसे डिवोटी बनाया नारद मुनि ने, एनीवे वापस नहीं पूछूंगा क्योंकि वहां तक पहुंचे नहीं है हम लोग. तो प्राचीनी भरी एक राजा था और राजा का बहुत ईगो होता है. अगर उसको डायरेक्टली जाके बोलो कि तुम मूर्ख है तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा. तो बोलता कुछ भी करने का लेकिन मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का, आटा माजी सटकली तो ईगो हर्ट नहीं करने का मेरा. तो उसको इनडायरेक्टली बोला, उसको कैसे ब्रीच किया, प्राचीनी भरी को कैसे ब्रीच किया नारद मुनि ने, एनीबॉडी नोस, हाउ डिड नारद मुनि ब्रीच प्राचीनी भरी, यस गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ पुरंजन. सो ही इनडायरेक्टली ब्रीच, उन्होंने पुरंजन का स्टोरी सुनाया और बताया कि ये पुरंजन है और पुरंजन के सारे जो डिसएडवांटेज थे वो उसको बताते गए और उसको समझ में आ गया कि ये मेरे बारे में है. इनडायरेक्ट प्रीचिंग किया, क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों को ऐसे ही प्रीच करना पड़ता है. डायरेक्टली जाके उसको बोलो कि नो प्रभु जी यू आर फॉलन, तो एक झापड़ लगा धाड़ ये क्या बोला करके ना. तो प्रचार करने के लिए हम लोग जब जाते हैं तो हमको समझना चाहिए टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस और किस व्यक्ति के साथ कैसा प्रचार कर रहे हैं, सबको जाके वहीं पे एक कहानी नहीं सुनानी चाहिए, है कि नहीं? कुछ इंटेलिजेंट क्लास के लोग होते हैं, कुछ बहुत एफ्लुएंट लोग होते हैं, कुछ एकदम नीचे के स्तर पर रहते हैं, तो सबको अलग अलग प्रकार से। तो उसने कैसे किया, पुरंजन का स्टोरी सुनाया। अब ये पुरंजन का स्टोरी आप भागवत में जाके पढ़ लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं तो आपको सुनाता था, या कभी और मौका मिलेगा तो बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी को कैसे प्रचार किया नारद मुनि ने, व्यासदेव जी को भी प्रचार किया ना, तभी तो भागवत लिखा उन्होंने। उनको कैसे प्रचार किया, बाय गिविंग हिज ओन एग्जाम्पल, अपना खुद का स्टोरी बताया, क्योंकि व्यासदेव जी का लेवल भी बहुत हाई है, यू नो, उन्होंने सारे वेद पुराण सब कुछ लिख दिए थे, और व्यासदेव जी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी कहना ऑफेंसिव होता था। पुरंजन का स्टोरी इनडायरेक्टली सुना के प्राचीन बरी को प्रचार कर दिया, एक फिक्शन बताया, फिक्शन सुनाया, लेकिन व्यासदेव जी को फिक्शन नहीं सुना सकते थे, तो बोले व्यासदेव जी को कैसे प्रचार करेंगे, सो ही गेव हिज ओन एग्जाम्पल कि देखो व्यासदेव जी भक्ति में इतनी शक्ति है, लेकिन तुमने भक्ति नदारद कर दी, तुमने इतने वेद पुराण उपनिषद इत्यादि लिख दिए केवल ये बताने के लिए कि भगवान कौन है, हाँ भगवान क्या है ऐसा बताया, लेकिन भगवान कौन है और भक्ति के बारे में डायरेक्टली नहीं बताया, सब कुछ इनडायरेक्टली तुमने इधर उधर लिख दिया, और एक जीव जो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति नेचुरली अट्रैक्टेड होता है, तुमको उसने और अट्रैक्टिव बना दिया तुमको, कि जैसे कि आपको अगर समझो अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो वेदों में आयुर्वेद है, आयुर्वेद का सहारा ले लो, तो हर जगह पे आपने इसी प्रकार से कर दिया। तो भक्ति में कितनी शक्ति है मैं आपको बताता हूं, कि देखो मैं दासी पुत्र था, लेकिन वेदांतिस भक्ति वेदांतिस लोगों का सेवा करके और उसका उच्छिष्ट खा खा के, और क्या हुआ, भक्त पद धूलि भक्त पद जाल भक्त भुक्ता अवशेष तीनी महाबल, कि उनका झूठा खा के वैष्णवेर उच्छिष्ट ताहे मोरा मन निष्ठा, वैष्णवरे नामे ते उल्लास वृंदावन चबूतरा ताहे मोरा मन घेरा, कहे दीना नरोत्तम दास। वैष्णव का उच्छिष्ट खा के, और आपको वो स्टोरी पता है नारद मुनि की ही, कि उसको भगवान का एक छोटा सा उच्छिष्ट मिला नारायण का, और फिर वो शिवजी के पास गए, शिवजी नाचने लगे, तो बोले भक्ति में इतनी शक्ति है, तुमने भक्ति के बारे में स्पेसिफिकली नहीं लिखा, इसलिए मैं आपको आदेश देता हूं कि अभी श्रीमद भागवतम की रचना करो, सो श्रीमद भागवतम में कुछ भी मल मत रखना, अमल पुराण बनाओ उसको, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो रिद्यवरुद्यते कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। कि उसमें से धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, सारे सब कैतव धर्म को पहले लात मार के निकाल दो, और केवल भक्ति, और केवल भक्ति की बात करो। व्यासदेव जी को समझ में आ गया क्या करने का है, तो व्यासदेव जी को कैसे प्रचार किया, भक्ति के माध्यम से। तो हमने पहला क्या देखा, अच्छा एक और, एक दो और है वो बता के फिर हम लोग उसको करते हैं। फिर एक और जन को उन्होंने प्रचार किया था, ऐसे तो बहुत सारे किए आपको पता है, बताओ बताओ और किसको प्रचार किया नारद मुनि ने, चित्रकेतु महाराज को, है कि नहीं? जानते हैं चित्रकेतु की कथा, किसी को पता है? चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ रानियां थी, हाईएस्ट इन द हिस्ट्री, और किसी के पास इतना नहीं था कैपेसिटी, 1 करोड़, लेकिन एक पुत्र नहीं था उनके, 2 करोड़, अरे सिद्धगराम रो रहे, 2 करोड़ बढ़ गया नंबर, 2 करोड़ रानियां थी उनकी और एक पुत्र नहीं था, तो बेचारा परेशान हो गया। तो इस जीवन के अंदर सारे सुख मिलेंगे लेकिन एक नहीं मिलेगा, और उस एक को ढूंढते ढूंढते आदमी दुखी हो जाएगा, ये संसार का नियम है। तो एक पुत्र नहीं था, और बहुत नारद मुनि और अंगिरा मुनि उसके पास प्रचार करने के लिए गए, उसने सुना नहीं कुछ नारद मुनि को, और बोला मेरे को एक पुत्र दे दो। नारद मुनि ने सोचा कि यार अभी इसको भगवान का इतना बड़ा भक्त है, लेकिन भक्ति भक्ति सब छोड़ दिया, 2 करोड़ लोगों से शादी किया, अभी क्या समझाऊं इसको मैं। उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र थोड़े टाइम में मर गया, तो उसका नाम था हर्ष शोक, और नारद मुनि ने सोचा कि इसको मैं कितना भी प्रचार करूं ये मेरी बात सुनने वाला है नहीं, ये उसी की बात सुनेगा जिससे वो अटैच्ड है। और किससे अटैच्ड था? अपने पुत्र से। तो अपने पुत्र के द्वारा उसको प्रचार करवाया। तो कभी कभी क्या है कि हम लोग भी अपने घर वालों को बहुत प्रचार करने के लिए उत्साहित रहते हैं कि गांव में जाऊंगा, उनके हाथ में माला थमाऊंगा और वो लोग भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या होता है, वो तो माला लेते नहीं, आपकी माला छीन लेते हैं। बैठ इधर। तो कई बार हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, होता नहीं है, तो कई बार इनडायरेक्टली करना चाहिए कि भैया ये मेरी बात सुनने वाला नहीं है, किसी और प्रभु जी को बुलाता हूँ और उनसे सुनवाता हूँ। तो ये भी एक तरीका है प्रचार करने का, है ना। ये प्रैक्टिकल चीज हमको पता होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग जाके बस खाली कुछ भी बोल देंगे। जैसे एक लड़का अपने गांव में गया और पता चला कि मेरे माँ बाप जो है वो लोग कांदा लहसुन अभी भी खाते हैं, तो बोला कांदा लहसुन छोड़ो। तो बोला नहीं, मैंने हम लोग नहीं, मतलब ऐसी अचानक कैसे छोड़ देंगे। तो बोला नहीं, मैं फिर घर पे खाना नहीं खाऊंगा। तो उसकी माँ ने हलवा बनाया, बोला ठीक है इसमें तो कांदा लहसुन नहीं, खा ले। तो हलवा खिलाने लगी, बोला नहीं तुम लोग कांदा लहसुन डालते हो, मैं नहीं खाऊंगा। तो उसने बोला बेटा मैं तेरी माँ हूं, खा ले। बोला तुम माँ नहीं, तुम माया हो। तो कभी कभी जब बुद्धि इतनी मोटी होती है, समझ में नहीं आता है कैसे करने का, तो कुछ भी उल्टा पुल्टा कर जाते हैं। तो ऐसे प्रचार नहीं, और फिर जाके वो आज तक वाले हमारा वीडियो बनाते हैं, है ना। तो दिमाग लगाने का थोड़ा सा भगवान ने दिया है, और अगर अपने में दिमाग नहीं है तो दूसरे से पूछने का, बड़े चढ़े भक्तों से, भैया मैं क्या करूं कैसे करूं, यू नो, सहारा लेने का। तो चित्रकेतु को इनडायरेक्टली ऐसे प्रीच किया अपने बेटे के द्वारा। और प्रहलाद, ठीक है उसको तो मां के पेट में ही प्रीच कर दिया। ध्रुव को भी प्रीच किया उन्होंने, और ऐसा प्रीच किया कि 3 महीने के अंदर साक्षात भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। तो अलग अलग प्रकार से उन्होंने प्रीचिंग किया। और नल कुवेर और मणिग्रीव जो मैंने आपसे पूछा था, उनको कैसे प्रचार किया? श्राप देके प्रचार किया। तो देखो साधु किसी को श्राप नहीं देता है, लेकिन वो लोग का इतना घटिया स्तर था कि श्राप देके ही वो अपने वापस से अपने उनका दिमाग ठिकाने पे आ सकता था, दूसरा कोई तरीका नहीं था। तो उनको श्राप दिया, लेकिन साधु का श्राप भी क्या होता है? आशीर्वाद होता है। लेकिन ये प्रचार करने का तरीका है। तो कभी कभी क्या है कि किसी को फूल देके प्रचार करना पड़ता है और किसी को झापड़ देके, लेकिन झापड़ ऐसे नहीं देना है। प्रभुपाद जी कई बार ऐसा करते थे कि एकदम यू नो, जैसे किसी ने पूछा कि स्वामी जी यू डिस्क्राइब्ड अबाउट, जैसे प्रभुपाद जी लंदन एयरपोर्ट पे उतरे, वहां पे पूछा कि प्रभुपाद यू स्पीक अबाउट द हेलिश प्लैनेट इन योर बुक्स, हैव यू सीन हेल? एंड प्रभुपाद ने लंदन के एयरपोर्ट पे लंदन के रिपोर्टर को बोला लंदन इज हेल। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, नहीं तो इधर से हम लोग को बाहर निकाल देंगे और हेल में से जेल में डाल देंगे। तो टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से प्रचार करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी जब 1965 में जब गए तो देखा के सारे लोग नशेड़ी थे, है कि नहीं? इनिशियल जो लोग प्रभुपाद जी के पास आए थे वो सारे के सारे नशेड़ी थे, LSD लेते थे और जुआ खेलते थे और नो इस प्रकार से शराब वराब पीते थे। और उनका एक ही फंडा था कि दे वॉन्टेड टू स्टे हाई। तो प्रभुपाद ने पूछा कि भाई तुम्हें LSD क्यों लेते हो, ये हीरोइन क्यों लेते हो, ये सब क्यों लेते हो? तो बोला वी वॉन्ट टू स्टे हाई। तो प्रभुपाद जी समझ गए कि अच्छा। तो प्रभुपाद जी ने उनको क्या दिया? बोला आई विल गिव यू समथिंग बाय विच यू विल रिमेन हाई फॉर एवर। नहीं तो LSD क्या है कि जब तक नशा है तब तक है, और जब उतर गया तो फिर नीचे आ जाता है कि नहीं? जब तक क्या है कि नशे के अंदर आदमी है तब तक कुछ भी बोलते रहता है, और एक बार जब नशा खत्म हो गया तो वापस से ना। एक बार एक आदमी ऐसी घूमते घूमते रात को 12 बजे जा रहा था और पुलिस ने पकड़ लिया, बोले ए किधर जा रहा रात को 12 बजे? तो वह प्रवचन सुनने के लिए। बोला रात को 12 बजे कौन प्रवचन देगा? बोला मेरी बीबी, घर जा रहा हूं, है क्या नहीं? तो कई बार नशेड़ी लोगों को पता नहीं रहता है तो अपने नशे में कुछ भी बोलते रहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा मैं तुमको एक ऐसा नशा दूंगा बाय टेकिंग विच यू विल रिमेन हाई फॉर एवर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुमने बोला ठीक है चलो बैठ के सुनते, आपको सुनाओ क्या बोलना है। प्रभुपाद जी ने गोलोक वृंदावन के बारे में बताया। अभी आधे से ज्यादा भारतीय लोगों को गोलोक वृंदावन के बारे में पता नहीं है। अभी उनको क्या गोलोक वृंदावन, क्या मालूम क्या होगा करके, तो किसी ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी व्हाट इज गोलोक वृंदावन। प्रभुपाद ने बोला, इसको कैसे समझाऊं मैं, गोलोक वृंदावन क्या है? प्रभुपाद ने बोला, इट इज एन ओशन ऑफ एलएसडी, ये एलएसडी का समुंदर है, उसके अंदर तैरते रहो। तो बोला हाँ, तो प्रभुपाद, डू यू वॉन्ट टू गो? यस प्रभुपाद, आई वॉन्ट टू गो, ओके हियर ईट दिस। तो ऐसा प्रभुपाद प्रचार करते थे। और प्रभुपाद जी का प्रचार करने की टेक्निक बहुत अलग थी। एक बार वन मैक्सिकन क्या बोलते उसको मिस यूनिवर्स, यू नो मैक्सिकन लेडी हु वाज अ मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, वो प्रभुपाद जी से एक प्रश्न पूछने लगी। बहुत सारे रिपोर्टर फोटोग्राफर सब थे, तो उसको लगा कि चलो मैं भी कुछ स्पिरिचुअल कुछ पूछ लेती हूँ। तो प्रभुपाद से पूछा कि स्वामी जी, गॉड इज ऑल गुड, भगवान जो है वो सबसे अच्छे हैं, बट वाई दिस वर्ल्ड इज ऑल बैड? द गॉड इज ऑल गुड, बट वाई दिस वर्ल्ड इज सो बैड? अभी प्रभुपाद जी वहां पर 7 डेज भगवदगीता कोर्स भी दे सकते थे, कुछ भी बता सकते थे उसको, लेकिन प्रभुपाद ने उसका मानसिक भाप लिया कि उसने देखा कि एक कैमरा देख के बात कर रही है। तो प्रभुपाद जी ने भी वैसे ही आंसर दिया जो उसके दिल में उतर जाए। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, सो यू आर मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड, वेरी नाइस, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। तो बड़ी खुश होगी, बोले अरे स्वामी भी मेरी तारीफ कर रहे हैं देखो। तो प्रभुपाद ने कहा, ये प्रभुपाद का स्ट्रेटेजी था। तो प्रभुपाद ने कहा, ओ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी गुड, बट व्हाट अबाउट योर स्टूल, तुम्हारी विष्ठा के बारे में क्या? यू आर वेरी गुड, बट व्हाई योर स्टूल इज सो बैड? और एक आंसर से उसको समझ में आ गया कि व्हाई द गॉड इज वेरी गुड एंड द वर्ल्ड इज वेरी बैड। तो प्रभुपाद जी का प्रचार करने का अलग अलग तरीका था। तो प्रभुपाद जी ऐसा ऐसा प्रचार करते थे, कई बार कई साइंटिस्ट लोग आते थे और डिफीट होकर जाते थे, या कभी प्रभुपाद की बात नहीं मानते थे और जाके उनके शिष्यों से कहते थे कि यार तुम्हारा बूढ़ा स्वामी जो है इसकी बातों का हमारे पास जवाब नहीं है। जैसे प्रभुपाद ने एक बार पूछा कि चांद जो है वो सूरज से दूर है, अभी हम लोगों को मालूम नहीं है बात, पर भागवत में दिया हुआ है कि सूर्य जो है वो नजदीक है और चांद दूर है। कितने लोगों को बात पता था, हाथ लगाओ पहले। तो यहां आके आप लोग कुछ सीख के भी जा रहे हो, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सौर मंडल के हिसाब से सूर्य आगे है। तो उन्होंने कहा नहीं चंद्र। तो बोले बताओ क्यों? उनके पास उत्तर नहीं था कुछ। तो प्रभुपाद ने कहा बिकॉज मंडे कम्स आफ्टर संडे। दे गॉट बिविल्डर्ड, बोले क्या बोल रहा है स्वामी जी? बोला बिकॉज मंडे कम्स आफ्टर संडे, पहले संडे आता है फिर मंडे आता है, इसलिए सन पास में मून दूर है। बताओ तुम, अगर नहीं है तो तुम बताओ मेरे को। प्रभुपाद ने कहा कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, एक्सेप्ट इट, अदरवाइज शो मी समबडी एल्स एंड देन आई विल एक्सेप्ट। अगर तुम्हारे पास, हमारे पास शास्त्रों का प्रमाण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, भागवत में लिखा हुआ है, ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, सब जगह पे है। तो प्रभुपाद जी ऐसा ऐसा आर्ग्यू करते थे बेस्ड ऑन टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। एक आदमी आया प्रभुपाद को, बोला प्रभुपाद जी आपके मंदिर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन घंटी नहीं है। इस्कॉन के मंदिरों में घंटी नहीं होती है ना, देखा है आपने? कई बार हम लोग डिवोटी बनते ऊपर देखते हैं किधर है कि घंटी बजाऊंगा भगवान के पास जाऊंगा, घंटी नहीं है वहां पे। तो प्रभुपाद जी ने कहा तो क्या होता है, तो पहला तो ये कि सब कुछ अच्छा है लेकिन घंटी नहीं है, तो हम वही चीज देख रहे हैं। तो प्रभुपाद ने भी बहुत सॉलिड आंसर दे दिया। प्रभुपाद ने कहा कि हम लोगों का घंटी जो है वो हमारे मुंह के अंदर है, हमारा जीवा, और जब बजता है तो एक ही आवाज आता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से अलग 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 लोगों को अलग अलग प्रकार से प्रचार करते थे। जैसे नारद मुनि, ही एम्प्लॉयड डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू प्रीच टू डिफरेंट पीपल। ओके, तो हम रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। सबसे पहले किसको प्रचार किया नारद मुनि ने, हमने कौन सा पहला एग्जाम्पल दिया? दक्ष, उधर उसके पहले था, आप तो और पहले चले गए, दक्ष के पुत्र, ठीक है? तो दक्ष के जो 10,000 पुत्र थे उनको कैसे प्रचार किया, हाउ डिड ही प्रीच? बाय रिडल, बाय सेइंग वन रिडल और शादी करोगे। हाँ, उनको बेचारे का मनोबल ही तोड़ दिया, ब्रह्मचारी बनना पड़ा उनको। एक रिडल सुनाया, सोचो एक रिडल में किसने प्रचार किया है, लेकिन एक सेंटेंस का और प्रचारक है। जैसे प्रभुपाद ने एक सेंटेंस कहा था, जगत तारिणी माता जी, अगर किसी ने अपना नाम सुना है, कौन थी वो, कौन थी जगत तारिणी माता जी? नो, शी वॉज अ हीरोइन, शी वॉज द स्टार एक्ट्रेस, हॉलीवुड एक्ट्रेस। तो जगत तारिणी माता जी को उन्होंने एक प्रश्न पूछा प्रभुपाद को, उन्होंने कहा कि देखो तुम ये सब काम कर रही हो, क्या 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 बेनिफिट है इसके अंदर इतने। जैसे हमने शुरुआत कहां से की कि एक जन्म की श्रृंखला नहीं, प्रभुपाद जी की आंखों में पानी क्यों आया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जन्म जन्म से ये लोग लाइन में खड़े हैं, बस की लाइन में खड़े रोटी कमाने के लिए, और जन्म जन्म से लाइन में खड़े हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि सो मेनी लाइफ टाइम्स वी हैव वेस्टेड, जस्ट गिव वन लाइफ टू कृष्ण, केवल जीवन, एक जीवन जो है वो कृष्ण को देके देखो, फिर देखो कितना मजा आएगा। उसको ये बात समझ में आ गई। प्रभुपाद ने एक लाइन में प्रचार किया, उसको हीरोइन थी वो, बहुत बड़े लेवल पे थी, उसको बोला एक लाइफ खाली कृष्णा को देके तो देखो कितना मजा आएगा, लेकिन एक लाइन में वो समझ गई। तो एक रीडर पूछा 10,000 डिवोटी सीधा, फिर दूसरा किसको प्रचार किया, मृगारी, अरे आप बोलो बाबू मैं बोल रहा हूं, दूसरा किसको प्रचार किया, मृगारी को कैसे प्रचार किया, स्पेशल इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट बता के, नरक के बारे में स्पेशल इफेक्ट दिया, उस प्रकार से प्रचार किया। एक और चीज मैं भूल गया था, वाल्मीकि, वाल्मीकि को कैसे प्रचार किया, उनको भी स्पेशल इफेक्ट थोड़े से बताए, लेकिन ही वॉज वेरी अटैच टू हिज फैमिली मेंबर, बिकॉज उसको नारद मुनि ने पूछा है तू सब क्यों करता है, तो बोला मेरे फैमिली मेंबर जो है ना उनका भरण पोषण करने के लिए। तो बोला जा पूछ के तेरे पाप में वो लोग भागी होंगे क्या, तो जाके पूछा आप मेरे पाप में भागी होंगे, सबने मना कर दिया, उन लोगों से प्रचार किया डिफरेंट वे में। तो ये वाल्मीकि को किया। फिर व्यासदेव जी, व्यासदेव जी को कैसे प्रचार किया, नहीं नहीं अपना एग्जाम्पल देके, अपना खुद का एग्जाम्पल देके। फिर प्राचीन वर्ही, उसको कैसे प्रचार किया, फिक्शन, एक फिक्शन स्टोरी बोल के, पुरंजन के बारे में बोल के। उसके बाद, उसके बाद चित्र केतु महाराज, उनको कैसे प्रचार किया, अपने पुत्र के द्वारा, बोला मेरी बात समझेगा नहीं है और पुत्र से आसक्त है, इसकी आसक्ति उसके अंदर है, उसके द्वारा इसको प्रचार करो। और फिर बाद में ध्रुव, प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु को भी उन्होंने किया। उनको कैसे प्रचार किया, हिरण्यकश्यपु को कैसे, कौन सी चक्की का आटा खाता है मेरे जैसा कैसे बनेगा तू, अगर ऐसा बॉडी चाहिए तो जा तपस्या कर। और फिर लास्ट में नल कुबेर और मणिग्रीव, उनको कैसे प्रचार किया, श्राप देके, क्योंकि उनका भला चाहते थे। और कभी कभी ऐसा प्रचार हमको नहीं करना चाहिए, अगर हमारा वो लेवल नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी करते थे। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा भी था, दैट आई एम लाइक ए कराटे मैन, जैसे कोई क्रिश्चियन से मिलते थे एक ही क्वेश्चन पूछते थे, द 10 कमांडमेंट, द फर्स्ट कमांडमेंट इज दाउ शैल नॉट किल, व्हाई आर यू किलिंग, वो उनको पास जवाब ही नहीं होता था। तो प्रभुपाद कहते थे कि आई एम लाइक ए कराटे मैन, आई हिट ऑन दैट वन स्पॉट, खट 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 धम, वहीं पे तोड़ देते थे उनको। तो प्रभुपाद के लेवल पे हम लोग नहीं है, तो वैसा प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल बताते हैं कि कभी कभी हमको सुई के जैसा भी प्रचार करना चाहिए, एंड समटाइम्स वी हैव टू एंटर लाइक ए नीडल एंड कम आउट लाइक ए प्लाउ, ये प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे। सो हाउ कैन वी एंटर, वी कैन एंटर थ्रू प्रसादम और बाय गुड वर्ड्स और बाय फ्रेंडशिप, एंड देन फिर उसको फाड़ के उसको प्रचार कर सकते हैं। तो ये अलग 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 स्ट्रेटेजी है जो नारद मुनि जी से हम सीख सकते हैं, और नारद मुनि जी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, भगवान की लीलाओं में सहायक है, नंबर वन ही पार्टिसिपेट्स इन द लीला ऑफ द लॉर्ड, एंड देन ही गाइड्स, ही प्रीचेस, ही काउंसिल्स ऑल हिज डिवोटीज। सो नारद मुनि के श्री चरणों पे हम लोग प्रार्थना करते हुए इस कथा को यहाँ विराम देते हैं, और नारद मुनि से प्रार्थना करते हैं कि हे नारद मुनि जी, जितने बड़े भगवान के आप भक्त हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम भी भगवान के भक्त बन सके, और भगवान का भक्त बनने के बाद थोड़ा शिला प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में प्रचार में सहायक बन सके। प्रीचिंग इज द एसेंस, शिला प्रभुपाद ने कहा प्रचार ही सार है, इसके लिए हम लोग भी शिला प्रभुपाद जी के इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ सहायता करना चाहिए। सो आई स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, जय श्री नारद मुनि की, जय शिला प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे। जय श्री प्रभुपाद की जय।
So let us thank His Grace Dasamrita Prabhu for wonderfully narrating Narada Muniji and explaining about the pastimes of Srila Prabhupada by chanting three times Hare Krishna Mantra.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare.